कर्णानुयोग परिचय पुस्तक में से 15वां जो पाठ है पर्याप्त की स्वरूपना, उसको हम आज सीखेंगे। कल हमने जीव समाज के भेद देखे थे, उसमें हमने देखा था कि पर्याप्त और अपर्याप्त। तभी कुछ समझे नहीं थे पर्याप्त क्या होता है, अपर्याप्त क्या होता है, उसका अर्थ आज अपनी समझ में आ जाएगा। जीव समाज यानी जीवों के भेद, जीवों के भेद कितने किए हमने, तो 14 किए। किसी विशिष्ट अपेक्षा से हमने जीवों के 14 ग्रुप किए, उसको जीव समाज कहा। मार्गणा ने 14 मार्गणा होगी और मार्गणा स्थान में और वो 5 उसको उपचार से पूरे को मिलकर मार्गणा स्थान कहते हैं। अन्य 5 प्ररूपणाएं जो है ना, जो पर्याप्ति प्राण सौम्य आदि, उसको भी उसमें इंक्लूड करके पूरे जीवों के जो 20 प्ररूपणाएं हमने कही थी, 20 हमने देखे थे ना, उसका वर्णन 20 प्रकार के, तो उसमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान इसमें सारे 20 आ गए। तो अकेले मार्गणा कहेंगे तो वो 14 मार्गणाएं होगी। उसमें कुछ नहीं आता, जैसे सूक्ष्म और बादल ये अलग टाइप का भेद है। और प्रत्येक साधारण में क्या होता है कि प्रत्येक ने एक शरीर में एक जीव और साधारण में एक शरीर में अनेक जीव, अनंत जीव, ये भेद अकेले वनस्पति कायिक में होता है। यानी साधारण प्रकार का जो है जीव वो वनस्पति कायिक होते हैं, जिसको निगोद कहते हैं। बाकी सारे जीव प्रत्येक ही है, इंद्रिय तिंद्रिय जतेंद्रिय पंचेंद्रिय, हाँ सूक्ष्म भी, पृथ्वी कायिक आदि जो सूक्ष्म है वो प्रत्येक है, वो भी प्रत्येक है। मगर सूक्ष्म में भी साधारण और प्रत्येक होगी, सूक्ष्म वनस्पति कायिक में और बादर वनस्पति कायिक में भी साधारण और प्रत्येक होगी। ये वनस्पति कायिकों में इतने सारे भेद है, बाकी कंफ्यूजन इतना नहीं है। वो फिर आएंगे हम महिंदीय मार्गणा में एक दूसरे को दोबारा देंगे। देखो अब पर्याप्त भी प्ररूपना चालू करते हैं। मिल गया पुस्तक, आप पढ़ते हो पुस्तक नहीं पढ़ते? अच्छा सुनो, मिला सबको जीव समाज का वर्णन और भेद प्रभेद पढ़कर, तो हमने पढ़ा था ना जीवों की अनंत संख्या, तो हमने देखा था जीव कितने हैं, हमने पहले याद किया था ना जीव कितने, पुद्गल कितने, तो उसमें हमने देखा था जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत। तो जो अनंत जीव हम कहते हैं, तो अनंत में से तो सिद्ध अलग किए हमने, और जो संसारी है वे भी अनंत है, तो वो जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसी कैसी पर्याय में पाए जाते हैं, या ऐसा कहो कि आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, वो हम पहले कितने अनंत भव करके 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 अभी यहाँ तक आए, तो हमने किस किस पर्याय में जन्म मरण किया था इसका सारा वर्णन हमने कल देखा था, याद है? 14 की 14 वैशाली बोलो, 14 जीव समाज कल जो हमने बोर्ड पर देखा था, वेरी गुड। हाँ हाँ बहुत अच्छा, सारे के ये साथ हो गए, अब सबके क्या क्या हुए, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 14 भेद हो गए, अभी आज उसके आगे सीखेंगे। दीपाली पेज नंबर कितना है आपका, 125 126, पर्याप्ति प्ररूपना। देखो कल हमने क्या देखा था, जीव समाज का वर्णन और भेद प्रभेद पढ़कर जीवों की अनंत संख्या और केवल ज्ञान की अनंत शक्ति का, क्योंकि केवल ज्ञानी नहीं ये सारा जाना है, हमारे तो ज्ञान में ये सारा नहीं आया था, तुम्हें थोड़ा तो अंदाजा आया होगा, तुम पूछोगी जीव समाज जानने से हमें क्या लाभ होगा, तो सुनो इंद्रदेव का प्रश्न यहाँ डाला है, अनंत जीव किस किस पर्याय में रहते हैं, हम तो कह रहे जीव इसमें अनंत है तो कहाँ कहाँ रहते हैं, इस बात का हमें पता चलता है, हम भी आज तक कहाँ कहाँ जन्म मरण करते करते इस मनुष्य पर्याय में आए हैं इसका ज्ञान होता है। निरंतर चलने वाले इस जन्म मरण के भवचक्र का भय लगने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जन्म मरण जन्म मरण जन्म, एक कहीं ना कहीं इसमें से कभी स्वर्ग कभी नरक कभी जीवंत कभी मनुष्य, ये तो सारा चलता रहता है, और इसमें से छूटने का मार्ग क्या है इसके बारे में विचार करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। पहले भी विचार करेंगे ना, अरे इसमें से कोई छूटने का मार्ग भी है क्या, मैं इसमें से छूटना चाहता हूँ, ऐसा विचार करेगा तब तो वो कोई मार्ग बताएगा तो उसके ऊपर विचार कर सकता है, उस मार्ग पर चलकर मुक्त हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, जन्म मरण से छूट सकता है। हमें छूटना है ना जन्म मरण से, कि जन्म मरण करते रहना है, क्यों आपको छूटना है कि नहीं? अच्छा, संसार के इस भय को संवेग कहाँ है, शास्त्र में आता ना संवेग शब्द सुना होगा कभी, प्रशम संवेग आदि शब्द आते, तो संवेग यानी संसार का जो जन्म ग्रहण का है उसका भय लगने लगता है। हमारे प्राप्त मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, कल हमने देखा था मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, तो उसकी दुर्लभता ध्यान में आने पर हम अपना समय बिना वजह गमा रहे हैं, कहीं भी अपना टाइम पास कर देते ना टीवी के सामने या ताश खेलने में या अन्य कोई चीजें खेलने में या गप्पे लगाने में, तो पता चलता है अपने समय कहाँ कहाँ, समय यानी टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, बिना वजह गमा रहे हैं इस बात का एहसास होता है, और शीघ्र स्वयं को पहचानने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। हमारे समान चैतन्य गुणधारी अन्य जीव, अन्य अनंत जीव कहाँ कहाँ जीवन बिता रहे हैं इस बात का ज्ञान होने से अपने कारण जीवों को चोट तो नहीं आएगी, पीड़ा यानी दुख तो नहीं पहुँचेगा, मरण तो प्राप्त नहीं होगा, इन बातों का हम ख्याल रख सकते हैं। जब पता चलता है कि ये यहाँ यहाँ भी जीवों के रहने के ठिकाने हैं या ऐसे ऐसे भी जीव होते हैं, तो वो कैसे, जैसे हम सुख दुखों का अनुभव करते हैं, कल हमने देखा था ना पंचाध्याय में जीवों की पहचान क्या है, जो सुख दुख का अनुभव करे वो जीव, तो जैसे हमें सुख दुख का अनुभव होता है, कहीं चोट लगती है तो हमें दुख लगता है, तो ऐसे उन लोगों को भी उन जीवों को भी दुख लगता है, तो हमारे कारण उनको दुख न पहुंचे इसके बारे में हम सावधान हो सकते हैं। कोई चीज उठाते हैं रखते हैं या कहीं भी क्या क्या चीजें करते हैं कोई भी क्रियाएं, तब अन्य जीवों की विराधना न हो ऐसे सहज भाव उत्पन्न होते, यदि पता ही नहीं होगा कि यहाँ जीव है तो हम केयरलेसली कैसे भी चलते रहते हैं। देखो सहज ऐसे कोमल परिणाम होते हैं जब हमें पता चलता है कि हम इन सारे पर्यायों में भ्रमण करके आज यहाँ आए हैं, और हमारे अनंत भवों के माता पिता पुत्र परिवार में से कोई ना कोई सर्वत्र विद्यमान है, तब प्रमाद के कारण, प्रमाद यानी असावधानी के कारण, होने वाली हिंसा हम टाल सकते हैं, उस संबंध में हम जागरूक रह सकते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में स्वच्छंदकर्ता के कारण जो हिंसा होती है उससे जीव विरत नहीं होता। चौथे गुणस्थान में वह अविरत होने पर भी उस जीव को उसके कारण होने वाली हिंसा के बारे में खेद बरतता है। देखो, पहले गुणस्थान वाला भी अविरत है, असंयमी है, दूसरे तीसरे चौथे वाला भी अविरत है, तो पहले वाला जो अविरत है व्रत नहीं है, उसको हिंसा से वो अभी हटा नहीं है। चौथे वाला भी अविरत है, तो उसमें कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? जो पहले वाला जो है वो सत्संग भी, उसको हिंसा में कुछ ऐसे दुख नहीं लगता, हिंसा भी होती रहती है और उसका अपना अपना मजा चलती रहती है। कोई भी कार्य में हिंसा हो तो उसमें उसको कोई दुख नहीं लगता। परंतु चौथे वाले को अभी एहसास है कि यहाँ यहाँ मेरे से ये हिंसाएं हो रही है, और उसको वो हिंसा के कारण ऐसा लगता है अरे अपने से हिंसा नहीं चलती, उसका दुख भी है उसको। ये दोनों में फर्क। पांचवे गुणस्थान वाला जीव त्रस्त हिंसा का त्यागी होता है। ये सारा विषय भी हमारे चल रहे हैं ना, रत्न हिंसाओं का चल रहा है कि चौथे वाला तो अविरत है अभी, परंतु पांचवे वाला त्रस्त स्थावर में से त्रस्त की हिंसा का त्यागी है, परंतु स्थावर जीवों की हिंसा से वह निवृत्त नहीं हो सकता। स्थावर जीव स्थावर हिंसा का त्याग उसके नहीं होता। मुनि को तो सर्वत्र और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग वर्तता है। मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरे से करवाना, और अनुमोदना यानी कोई करता हो तो उसको हाँ चलो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो करो, उससे भी हिंसा या हिंसा का भाव वो मुनिराज नहीं करते। यदि हमें जीव किस किस पर्याय में कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी, तब हम उनकी होने वाली हिंसा से परावृत कैसे हो सकते हैं, इन्हें हम हिंसा नहीं कर सकते। यदि हमें पता है कि यहाँ जीव है तो हम वैसे जागरूकता रख सकते हैं। जैसे हमें पता है कि वनस्पति में इतने सारे जीव है और हम बिना कोई वजह उसको काटते हैं, मरोड़ते हैं, तो हमें पता जब चलेगा कि यहाँ भी इतने सारे जीव रहते हैं, तो वो क्रिया हमारे से नहीं होगी, वो चल सकेगी। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और वनस्पति जीव है, इस बात का बहुत ही थोड़े लोगों को ज्ञान है। ये जैनियों के अलावा अन्य कोई उसको मानते भी नहीं इनको कि जीव है करके, और बताने पर भी थोड़े लोग ही उस पर विश्वास करते हैं। वृक्ष, बेल, घास आदि में जीव है यह बात समझ में आती है, परंतु वृक्ष की टूटी हुई शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों में भी अनेक वनस्पति कायिक जीव रहते हैं, यानी वो वृक्ष से जुदे हो गए फिर भी उसमें वनस्पति कायिक जीव है अभी, और उसके कारण ये सब सचित्त है इस बात का हमें पता नहीं चलता। अत्यंत छोटे छोटे फल, फूल, पत्ते सप्रतिष्ठित होते हैं। सप्रतिष्ठित का अर्थ हमने कल देखा था कि जिसके आधार से निगोद जीव रहते हैं, बादल निगोद, उन वनस्पतियों को सप्रतिष्ठित कहते हैं। तो बहुत जो छोटे ना कौले पत्ते हैं, एकदम छोटे छोटे फूल है, ये सारे ही सप्रतिष्ठित होते हैं, उसमें अनंत जीव रहते हैं। यानी वो एक जो वनस्पति का एक जीव एक एक तो होगा ही होगा, और उसके आधार से अनंत साधारण वनस्पति का एक जीव होंगे जिसको हम निगोद कहते हैं। और जब पत्तों में नसें दिखती है, वो लाइन्स दिखती है ना पत्तों के ऊपर शिराएं, इसको कहते हैं। फल या फूल तोड़ने पर समभंग नहीं होता। बहुत कौले फल है तो हम ऐसे तोड़ेंगे तो इक्वल पार्ट्स होते हैं, परंतु वो जब बड़े हो जाते हैं तो काटने ऐसे तोड़ने पर टेढ़े टूटते हैं, तो इक्वल टूटे तो समझना वो अभी सप्रतिष्ठित है। या ऐसे वो पापड़ी वगैरह होती है ना, वो सिंग, कोई भी सिंग भाजी, तो ऐसे काटते तो वो तंतु उससे लगा रहता है, तो तंतु है उसका अर्थ अभी वो सप्रतिष्ठित नहीं है, खाने योग्य है। समान टुकड़े न होकर आड़े टेढ़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें तंतु लगे रहता है, लगे रह जाते हैं, तब समझना अब ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गए हैं। यानी प्रत्येक वनस्पति तो है परंतु वो अनंत काय वाली नहीं है, अर्थात अब उनमें निगोद जीव नहीं पाए जाते। जीव समाज का अभ्यास होने से हमारा खान पान संबंधी विवेक जागृत होता है। ये सारे जीव समाज को जानने के क्या फल है उसकी बात चल रही है। चरणानु योग में आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है, उसमें खान पान संबंधी नियम बताए जाते हैं, पदार्थों की मर्यादाएं बताई जाती है, मर्यादाएं ने कितने काल तक वो पदार्थ भक्षण करने योग्य है, ऐसे उसमें बातें आती है। वही गया लिखा, विशिष्ट मर्यादा तक पदार्थ भक्षण करने योग्य होते हैं, उसके बाद उन पदार्थों में जीवों की उत्पत्ति होती है, यह उत्पत्ति अपने आप होती है। हम देखते हैं ना, वो दाल डब्बे में बंद करके रखे, बाहर से कोई अंदर जाता नहीं आता नहीं, फिर भी उसमें अपने आप कीड़े पैदा होते हैं। या कोई ऐसी चीज किसी बंद डब्बे में पड़ी रहती है, महीनों बाद हमें याद आता है या कहीं कोने में से हम निकाल के देखते तो अंदर कितने कीड़े सब या उसमें लटे बन जाती है। तो ये सारे सम्मूर्खन जीव कहलाते हैं, जो अपने आप वैसे वातावरण में उत्पन्न होते रहते हैं, उनके लिए माता पिता की जरूरत नहीं रहती। यानी दो कीड़े हो गए और उनका बच्चा छोटा कीड़ा होगा, ऐसा नहीं होता उसमें। ये सारे ही अपने आप पैदा होने वाले जीव होते हैं। देखो, यह उत्पत्ति अपने आप होती है। दवाइयों पर भी मुदत पूरी होने की तारीख यानी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। हम दवा पीते हैं या दवाई गोलियां खाते हैं तो उसमें देखते हैं, वो एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई ना, केमिस्ट से लाते समय ही उसमें देख कर लाते हैं। क्यों? तो उसमें तो कितने चौकन्ना रहते हैं, कोई कर चले चलाओ अभी चलेगा, एक महीना तो हो गया, तो नहीं, वहाँ कैसे डर लगता है, नहीं एक्सपायरी डेट वाली दवाई हम नहीं खाएंगे, कोई हो जाएगा तो। क्योंकि शरीर रूप अपने को मानते हैं ना, तो अरे शरीर में कोई नुकसान तो नहीं होगा, यानी मुझ में तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे ही मानता है वो। देखो, उसके पश्चात हम उन औषधियों का सेवन नहीं करते। अन्न दूध आदि खाद्य पदार्थों के बारे में भी मर्यादा का पालन करना अत्यावश्यक है। उसके सारे नियम बताए हैं शास्त्रों में कि कितने काल तक उसको भक्षण करने योग्य है। निर्जंतुक पदार्थ हवा बंद पैक बंद करने पर भी कुछ काल पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे वो तो पैक बंद है, सील बंद आया है, अभी केमिस्ट के पास से हमने लाया है, बिल्कुल एयर टाइट है, तो उसमें तो कोई कीड़े नहीं होंगे, तो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती है। फ्रिज में रखने से तो नहीं होगी, मगर फ्रिज में रखा करो 15 दिन तक कोई सब्जी डालकर रखो प्लास्टिक के, उसके ऊपर भी फंगस वगैरह आते हैं। यानी उसमें कुछ यानी वो मर्यादा थोड़ी बढ़ सकती है ठंडी के कारण, परंतु उसमें जीव उत्पन्न ही होते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। इसको कहते हैं सम्मूर्छन, वातावरण में से ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। सम्मूर्छन प्रकार के जन्म लेने वाले जीव, अभी ये सम्मूर्छन शब्द कैसे तैयार हुआ उसको बताते हैं। सम यानी समंता यानी आसमंत से, अपने परिकर से, परिकर आसमंत यानी बहुत, ये अपने आजू बाजू वाले जो पुद्गल परमाणु है उसमें से, आसमंत से सराउंडिंग से, अर्थात आसपास के पुद्गल में से कुछ पुद्गलों का ग्रहण करके अपने शरीर रूप से धारण करते हैं। यानी विशिष्ट वो वातावरण में से ऐसे वो तैयार हो जाते हैं। इन जीवों को जन्म देने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होगी। एक इंद्रियों से चतुर इंद्रिय तक के सभी जीव, कौन कौन सभी जीव कहा, कीड़े मकोड़े ये सारे जीव सम्मूर्छन जीव ही होते हैं। ये निबोध कैसे हो गए? हाँ, और पृथ्वी का एक सम्मूर्छन, जल का एक, सारे ही यानी एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक सारे ही जीव सम्मूर्छन जीव होते हैं। पंचेंद्रियों में मनुष्य और क्रियंचों में गर्भज और सम्मूर्छन ऐसे दो दो प्रकार पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में भी गर्भज मनुष्य, जैसे हम माँ बाप बच्चे होते हैं तो माता पिता से बच्चे होते हैं ना, गर्भज गर्भ में आते, उसको कहते हैं गर्भज, गर्भ में जन्मने वाले, और सम्मूर्छन यानी किसी विशिष्ट वातावरण में तैयार होने वाले। तो मूर्छन प्रकार के मनुष्य भी होते, तो वो कैसे होते हैं, कितने जन मरते हैं, कैसे उनका हाथ पैर होते कि नहीं, वो सब बातें आएगी। तो तिर्यंचों में भी गर्भज तिर्यंच और सम्मूर्छन तिर्यंच दो प्रकार होते हैं। हमें जो मनुष्य दिखते हैं वे सब तो गर्भज है, तो सम्मूर्छन जीव कहाँ हो गए मनुष्य वाले, वो अभी लिखा देखो। सम्मूर्छन मनुष्य कर्मभूमि के आर्य खंड की महिलाओं के साख आदि भागों में उत्पन्न होते, काट यानी अंडर आर्म, वे लब्धि अपर्याप्त होने से, देखो फिर अपर्याप्त शब्द आया, अपर्याप्त यानी अपूर्ण, पर्याप्त यानी पूर्ण। अभी किस बारे में अपूर्ण है, किस बारे में पूर्ण है, ये अभी आगे बात आएगी, क्योंकि अभी हमने पर्याप्ति अपर्याप्ति क्या होती उसको देखा नहीं है, उसको देखेंगे। वे लब्धि अपर्याप्त होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। छड़ाला में हमने पढ़ा था एक श्वास में अठ दस बार, तो वो किसकी बात थी, सब लोग कैसे समझते कि निगोद का ही आयु इतनी अल्प है जो एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं। तो अकेले निगोद नहीं, जो जो अपर्याप्त जीव है वे सारे ही इतने अल्प काल में मरते हैं। हाँ जन्मते एक श्वास में 18 बार जन्म मरण उनका होता है। तो श्वास कौन सा है, जैसे हम नाड़ी देखते हैं ना थक और ठक, तो दो के बीच में जितना काल है उसको एक नाड़ी कहते हैं। जैसे वो नाड़ी भी किसकी, जिसको बुखार आया है उसकी नहीं लेना, उसकी नाड़ी तो 100-120 हो जाएगी। या छोटे बच्चे को, बच्चे की नाड़ी नहीं गिनना, उसकी भी फास्ट होती है। एक गर्भ में बालक है उसकी तो नाड़ी 140-160 तक होती है। तो कौन सी, तो जो युवान है, हेल्दी है, ऐसे जो पुरुष है, तो उसकी कितनी होगी, 72 होगी। तो उसके बीच में यानी एक मिनट में 72 बराबर, तो एक के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सेकंड से भी छोटा हो जाएगा ना। देखो 60 सेकंड में 72 बार ठक 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 होता है, तो एक बार ठक ठक होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो सेकंड से भी छोटा होगा। देखो यहाँ इसका 78 है, 78 होते हैं, 72। हाँ ये भी वो 24 आते हैं भाव, और वो कितने, हाँ और वो कितने सेकंड का बहुत छोटे हिस्से में मर जाएंगे, वो उसका एक घोसला। ये सम्मूर्छन वाले गर्भ में आकर एक सेकंड में मरेंगे, वो गर्भज हो गए, वो पर्याप्त तो हो जाएंगे। उसका मैक्सिमम कितने बार जन्म मरण करेगा, यानी उसका एक लाइफ स्पैन कम होगा ना, कि श्वास के 18वें भाग इतने उसकी लाइफ स्पैन है, वो 18 बार वहीं पर जन्म मरण करेगा, इसी बात में। लगातार करे तो कितना होगा, ऐसी बात नहीं, वो हरेक को लगातार उतने भोग करने पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। उस अपर्याप्त अवस्था में से कोई पर्याप्त में जन्म लेगा, या अन्य कोई दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बनेगा, तो सब अपर्याप्त होते, ऐसी बात नहीं। देखो इसमें ये गणित समझाया, एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। एक श्वास का अर्थ है निरोगी युवा मनुष्य के दो नाड़ियों ने पल्स के बीच का अंतराल। एक मिनट में 78 श्वास होते हैं, यानी साधारणता पौने सेकंड का एक श्वास हुआ, अभी उसके 18वें भाग इतनी उनकी आयु है, तब उसका 18वां भाग करो, पौने सेकंड का 18वां भाग, यानी 3/4 ऑफ अ सेकंड इंटू 1/18, तो कितना हुआ, 1/24 ऑफ अ सेकंड। इसमें इन सम्मूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भव समाप्त होता है, कितना, सेकंड के 24वें भाग, इतना एक मनुष्य भव। तुम्हें समझाने के लिए यहाँ सेकंडों में स्थूल कथन किया हुआ है, वैसे तो इससे भी छोटा हो सकता है। सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी अल्प होती है, जहाँ जब जब हम कहेंगे अपर्याप्त, तब तक समझना कि ये इतनी छोटी आयु वाले जीव है। अपर्याप्त तो सभी हो सकते, एक इंद्रिय भी अपर्याप्त हो सकते, कौन कौन अपर्याप्त हो सकते, कल हमने देखा था ना ये सांस पहले भाग के, एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादल, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय के सन्नी असन्नी, ये सारे में ही पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो उसमें मनुष्य होंगे कि नहीं होंगे, है ना, मनुष्य भी उसमें, तो मनुष्य भी पर्याप्त और अपर्याप्त हो सकते हैं। देखो सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी अल्प होती है, इसे एक क्षुद्र भव भी कहते हैं। क्षुद्र है ना, छोटा, ठीक है। किसी जीव को लगातार यानी अपर्याप्त मरा, फिर अपर्याप्त में जन्मा, फिर अपर्याप्त में, फिर अपर्याप्त में, फिर अपर्याप्त में, ऐसे कितना हो सकता है, तो लगातार निरंतर क्षुद्र भाव प्राप्त होते रहे तो एक अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त कितना है 48 मिनटों में, एक समय कम मान लो 48 मिनट का, तो उसमें 66,336 भाव होते हैं। कितने बार मरा और जन्मा, 66,336। समझो कोई यहाँ मर गया मनुष्य और जाके अपर्याप्त में जन्मा और लगातार वहाँ जन्म मरण करता रहा, तो अभी यहाँ हम डायग्नोज भी नहीं हुआ, पौने घंटे के अंदर अभी वो मरा है क्या नहीं मरा है उसको डॉक्टरी इलाज करो, ये उसको बचाने का कोशिश करो, मर गया वो और फिर हम रोना भी शुरू करते हैं, तो उसके कितने बहुत बीत चुके हैं 66,336 होते हैं। इनमें एकेंद्रियों के, समझो एकेंद्रियों में लगातार जन्म करता रहा अपर्याप्तों में, तो 66,132 होते हैं। द्विंद्रियों के 80 होते हैं, त्रिंद्रियों के 60 होते हैं, चतुरिंद्रियों के 40 और पंचेंद्रियों के 24 भव होते हैं। अब पंचेंद्रियों में तिर्यंश भी है और मनुष्य भी है, देव को नहीं लेना यहाँ, क्योंकि देवों की आयु अपर्याप्त नहीं होती, लब्धि अपर्याप्त तक नहीं होते देव कभी, उनकी तो जितनी सागरों की आयु है उतने आयु वाले देव और नारकी होते हैं, तो ये अपर्याप्त अवस्था तिर्यंश और मनुष्य में हो सकती है। अब ये पंचेंद्रियों के 24 देखे, उसमें असन्नी पंचेंद्रिय के 8, असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंश के, सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंशों के 8 और सम्मूर्छन मनुष्यों के जो अपर्याप्त होते हैं 8 वो होते हैं। कर्णानि योग के इस विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन से हम दंग रह जाते हैं, यह संपूर्ण विषय केवल ज्ञान गम्य है और केवल ही भगवान के उपदेश द्वारा ही हमें ज्ञात हुआ है। यानी किसी ने अपने मन से ये बातें रची नहीं है, मन से बताई नहीं है। अब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का स्वरूप समझने के लिए पर्याप्ति संबंधी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, हमें यही विषय सीखना है ना, पर्याप्ति संबंधी। पर्याप्ति का अर्थ होता है कार्य रूप शक्ति, यानी विशिष्ट कार्य करने के लिए जो शक्ति आवश्यक है उसकी पूर्णता होना, उसको कहेंगे पर्याप्त। जो जीव इन पर्याप्ति के शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जैसे हम मकान बांध रहे हैं, तो अभी वो दीवारें वगैरह हुई है मगर दरवाजे नहीं लगे हैं, ऊपर छत नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे उसको, वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, हो रहा है अभी, चालू तो हो गया है। वैसे जब तक वो पूर्णता नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है पूरा मकान, तब हम उसको पूर्ण नहीं कहेंगे। वैसे ये जो कार्य जो शक्ति है वो डेवलप होती है, काहे की शक्ति वो आगे देखेंगे, तो जब तक वो चल रही है तब तक वो जीव अपर्याप्त कहलाएगा और जब वो शक्ति पूरी हो जाती है तब उसको पर्याप्त कहेंगे। तो वो कौन कौन सी शक्ति उसके बारे में भी बात आएगी, पहले पर्याप्त है नहीं पूर्ण और अपर्याप्त है नहीं अधूरा है अभी वो, ऐसा समझना। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अर्थात जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। इनमें पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। तो कोई जीव अपर्याप्त क्यों, कोई अपर्याप्त क्यों, ऐसे उसमें भेदभाव क्यों, कौन बनाता है उनको पर्याप्त और अपर्याप्त आदि पाली, ऐसी पार्शियलिटी क्यों, कोई पर्याप्त और कोई अपर्याप्त हो, किसने अपर्याप्त नाम कर्म का उदय, ऐसा नाम कर्म उनके पास किसने भेजा। जीव जो जो परिणाम करता है हर समय, हर समय हम जो जो परिणाम करते हैं शुभ हो या अशुभ हो, उससे आठों ही कर्म का बंध होता है। उसमें जो नाम कर्म नाम का एक कर्म है तो वो भी बांधते हैं, और जब उसका उदय आता है, जब वो कर्म छोड़कर निकल जाता है तो अपने को गिफ्ट देकर जाता है, जैसे परिणाम किए हुए ना उसका फल वैसा मिलेगा। तो जिसने ऐसे खोटे परिणाम किए हैं वो अपर्याप्त नाम कर्म बांधता है, और जो अपर्याप्त उन सारे का ही परिणाम ऐसे पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था मिलती रहती है। तो हमें पर्याप्त अवस्था मिलानी चाहिए कि अपर्याप्त आदिपाली चित्रा पर्याप्त बताया उसने क्यों इंदुबेन। अरे हमें ना पर्याप्त अवस्था चाहिए ना अपर्याप्त चाहिए, हमें तो सिद्ध अवस्था चाहिए, बराबर। क्यों, जन्म मरण से छूटना है ना, कोई बात, चलो देखो यह सब मिलाकर कुल छह पर्याप्ति है। ये जो हम अभी पर्याप्ति सीखने जाने हैं जा रहे हैं, तो वो कैसी होती है, उनका कार्य क्या है, वो कैसी शक्ति है, तो उसकी बात अब करेंगे। उसके छह नाम है, उसको पहले गिनाएंगे। पहले मैं बोलूंगी आप रिपीट करना। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, छह नाम है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इसी ऑर्डर में याद करना। ये क्यों इसी ऑर्डर में, तो उसका भी हम देखेंगे, स्वरूप का भी पता चलेगा। अब ये जो छह पर्याप्ति हमने देखी है, तो उसमें एकेंद्रीय जीवों को पहली चार पर्याप्ति होती है। वैसे आप देख के बताओ पहली चार पर्याप्ति कौन सी है जो एकेंद्रीय जीवों को होगी, उसमें से पढ़कर बताओ। हाँ वो छह नाम दिए ना, उसमें से पहली चार। हाँ हाँ हाँ, श्वास पर्याप्ति, बराबर। तो एकेंद्रियों को अगली दो पर्याप्ति क्यों नहीं होती है दीपाली? स्पर्श ही स्पर्श इंद्रिय है, यानी भाषा उनके नहीं होती और मन भी नहीं होता। तो भाषा किन जीवों को होती है? दो इंद्रियों से लेकर आगे वाले, और मन सन्नी पंचेंद्रियों। कभी मुझे बताओ दो इंद्रिय वालों को कितनी पर्याप्ति होगी? पांच, बराबर। और असन्नी पंचेंद्रियों को कितनी होगी? हाँ वैशाली, असन्नी जिसको मन नहीं है परंतु भाषा है, उनको कितनी पर्याप्ति होगी? हमने एक इंद्रियों में कितनी आपने गिनाए, भी चार, बराबर। दो इंद्रियों से लेकर तीन इंद्रियों को, चार इंद्रियों को, असन्नी पंचेंद्रियों को पांच पर्याप्ति होगी, और सन्नी पंचेंद्रियों को छह पर्याप्ति होगी। मन पर्याप्ति भी है उसमें, देखो यहाँ अपने पुस्तक में देखा। देखो इन छह पर्याप्ति में से एकेंद्रीय जीवों को पहली चार पर्याप्ति होती है, उनके भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती। द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रियों में पांच पर्याप्ति होती है, उनके मन पर्याप्ति नहीं होती। सन्नी पंचेंद्रियों में छह पर्याप्ति पाई जाती है। इन पर्याप्ति के छह भिन्न भिन्न नाम हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे। अभी हमने देखा नहीं उनके क्या कार्य, अभी देखने जा रहे हैं। उनका स्वरूप हम क्रमशः देखते हैं। तुम जानती ही हो कि जीव कहीं से मरकर अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है, और वहाँ नए पुद्गल स्कंध ग्रहण करता है। देखो कोई जीव यहाँ मनुष्य है तो वो मरेगा और अन्य कहीं जाकर उत्पन्न होगा, कहीं तीर्यंत होगा वो जाकर, तो क्या करेगा वहाँ जाकर, तो वहाँ के पुद्गल परमाणु को अपने शरीर रूप से ग्रहण करता है, स्कंधों को। अभी कहीं से मरकर यहाँ आया था माँ के पेट में, तो हम क्या सोचते, माँ ने उसको बनाया। एक्चुअल क्या हुआ, उस जीव ने यहाँ के जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल स्कंध है, उनको अपने शरीर रूप से ग्रहण किया, उसने अपना शरीर बनाया। अब यहाँ वो निमित्त का कथन चलेगा, द्रव्य नियोग की भाषा नहीं की, द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वैसा नहीं करता, परंतु यहाँ सारे निमित्तों में कथन हो रहा है, उसने ग्रहण किया पुद्गलों को, उसने शरीर बनाया, ऐसी कथन तो होगा, परंतु उसमें सही मान लेना, पुद्गल की रचना पुद्गल के कारण होती है, जीव उसमें कुछ नहीं करता। फिर भी दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए यहाँ ऐसी सारी भाषा, यहाँ कर्मानुयोग में ऐसी भाषा होती है, परंतु उसका सही अर्थ अपने को लगाने को आना चाहिए। देखो वहाँ नए पुद्गल स्कंध ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नौ कर्म वर्गणा कहा था, ये पुस्तक के शुरू में उसको हमने बताया था। देखो वर्गणा यानी स्कंध, अनेक पुद्गल परमाणुओं का गठा समूह, उसको कहेंगे वर्गणा। तो वर्गणा हमने नाम देखे थे, वर्गणा उसके नाम मालूम है, पांच प्रकार की वर्गणा है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वर्गणा वर्गणा मार्गणा नहीं, वर्गणा। हाँ सीधा। हाँ, और कारमाण वर्गणा। तो कारमाण वर्गणा को छोड़कर कितनी रही, चार। कौन कौन सी, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनो वर्गणा। इन चार को इकट्ठा हम एक नाम है, नौ कर्म वर्गणा। क्या नाम है, यानी पांच वर्गणा में दो भेद हुए, एक कर्म वर्गणा और अन्य चार नौ कर्म वर्गणा, बराबर। जिन्हें हमने पहले नौ कर्म वर्गणा कहा था, यानी जो नया पुद्गल परमाणु वो ग्रहण करता है, उसको नौ कर्म वर्गणा का ग्रहण करता है ऐसा कहेंगे हम, उसी को आहार करता है कहते, आहरण यानी लेना ग्रहण करना। तो ये आहार पर्याप्ति में क्या करता है उसकी बात आएगी अभी। देखो शरीर मन भाषा और श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है, वो लेता है, इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की, खल रूप यानी सॉलिड और रस यानी लिक्विड, जो परमाणु वो ग्रहण करता है उसको दो ग्रुप्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कुछ तो सॉलिड रखता है और कुछ को लिक्विड बना लेता है। तो खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, वो परिणमाता ऐसी बात नहीं यहाँ कर रहे, पहले क्या है उसको कन्वर्ट करने की जीव में शक्ति होती है। ये शक्ति यानी गुण, ये ज्ञान गुण वैसी शक्ति नहीं समझना। जीव क्या कर सकता है, अभी जो परमाणुओं को ग्रहण किया उसको क्या किया उसने, रस रूप और खल रूप परिणमाया, मगर ये परिणमाया कैसे परिणमाया, तो पहले उसमें ऐसी कोई शक्ति होगी तभी तो वो परिणमाएगा। तो ये शक्ति तैयार होने में भी कुछ टाइम लगता है, ये शक्ति तैयार होती है। तो ये जो खल रूप रस रूप परिणमाने की जो शक्ति है, पहले तो उसने ग्रहण किया उसको कहेंगे आहार, और उसको खल रूप रस रूप परिणमाया उसको कहेंगे हम, वो शक्ति जो है उस शक्ति को पर्याप्ति कहेंगे, परिणमाने को नहीं, क्योंकि ये जो परिणमन है वो तो पूरे लाइफ टाइम तक चलेगा। हर समय हम नए नए परमाणु ग्रहण करते और शरीर रूप से उसको परिणमाते रहते हैं, ये भाषा भी चलती ना, तो भाषा के लिए भी परमाणु, जो भाषा वर्गणा के परमाणु उसको ग्रहण करते हैं और फिर उसको शब्द रूप परिणमते हैं। तो इसमें जीव का जो निमित्त बना बनता है, तो उसमें जीव में भी ऐसी कोई शक्ति है तो उसके कारण ये बना है, तो ये जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। कौन क्या नहीं बनता है, उठ नहीं सकता तो भी उसका ग्रहण चलता है, मरते समय तक उसके अनंत परमाणुओं का ग्रहण चलता है, ऐसे कोई बात नहीं है, उसमें भी अनंत परमाणु ग्रहण करता है। शक्ति तो ये शक्ति एक बार पूरी हो गई ना तो मरण के समय तक चलती रहेगी। पर्याप्त यानी पूर्णता, उसमें पूरी पूरी शक्ति है। एक अंतर्मर्त में ये शक्ति उसके पास पूरी है, अभी उसमें से ये जो अन्य अन्य कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, वहाँ तो नाम कर्म का भी नया नया उदय चलता रहता है, उसमें बहुत सारे नाम कर्म है, साता असाता भी है, और शरीर के बहुत सारे नाम कर्म अलग अलग है, तो उसका सारा ऐसा कितना ग्रहण करेगा क्या करेगा, तो उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। खलरूप रसरूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। तो आहार पर्याप्ति यानी क्या, कि जीव कहीं से मरकर कहीं आया, वहाँ उस वो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है। वो ग्रहण क्यों करता है, तो वहाँ भी वो योग उसका निमित्त होता है। नाम कर्म है ना, शरीर नाम का नाम कर्म है, तो उसके उदय में उसमें आत्मा में ऐसे कंपन होते हैं कि वो ऐसे परमाणु को ग्रहण करता है, वो ग्रहण किए हुए परमाणु को सॉलिड लिक्विड बना देता है। तो वो बनाने के पहले उसमें ऐसी शक्ति निर्माण होती है कि वो बना सके, तो ये बना सके ऐसी जो शक्ति की उत्पत्ति होती है वो उसके लिए अंतर्मूर्त काल लगता है। छोटा अंतर्मूर्त, वो सेकंड का भी बहुत छोटा अल्प काल, क्योंकि हमने पूरा लाइफ स्पैन ही अपर्याप्त जीवों का कितना देखा था, 124 सेकंड, उसका भी कितना छोटा हिस्सा होगा कि उसके वो पर्याप्त बनने का काल होगा। उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब ये खल और रस रूप के बाद क्या होगा, तो जीव में और कुछ ऐसी शक्ति चाहिए कि उसको पूरा शरीर बनाने ना। देखो, खल और रस भाग रूप परिणमित हुए इन पुद्गल संघों में से खल रूप पुद्गलों को हड्डी चर्म चर्मणे शाम ऊपर की त्वचा आदि तीन हिरावय रूप तथा रसरूप पुद्गल स्कंदों को रक्त वीर्य आदि द्रव अवय रूप, यानी हम ब्लड है, लिम्फ है, लिम्फ यानी वो व्हाइट ऐसे कलरलेस लिक्विड निकलता है कोई जख्म में से, उसको लिम्फ कहते हैं। ये सारे रसरूप अवयव है। द्रव अवय रूप परिणमाने की जो शक्ति, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। देखो, आहार पर्याप्ति में कौन सी शक्ति उत्पन्न हुई, कि पुद्गल परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की शक्ति। शरीर पर्याप्ति में क्या शक्ति अभी और बनी उसकी, कि जो सॉलिड लिक्विड हुआ था खल और रस रूप, तो खल में से हड्डी चमड़ी स्नायु आदि सारे बने, ऐसी शक्ति उसमें उत्पन्न होती है जीव में, और रस रूप में से खून वीर्य आदि सारे रसरूप सारे जो लिक्विड जो है अवयव, उसको बनाने ऐसी शक्ति निर्माण होती है, उसको कहेंगे शरीर पर्याप्ति। अब अगली इंद्रिय पर्याप्ति देखेंगे। जीव में ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, अभी जीव कहीं से मरकर आया तो ज्ञान का कुछ उगाड़ होगा ना, वहाँ भी ज्ञानावरण का जितना क्षोभ चलेगा उतना उसका ज्ञान का उगाड़ होगा, वो कितने इंद्रिय वाला बनेगा ये सारा नक्की है ना। वहाँ पर भी अन्य अन्य कर्मों के, वहाँ पंच इंद्रिय पना है, दो इंद्रिय पना है, वो जाति नाम के नाम कर्म का भी उदय होगा, एक इंद्रिय जीव होगा के दो इंद्रिय होगा के तीन इंद्रिय होगा, तो उसका शरीर भी वैसे ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पंच इंद्रिय, उसकी कैपेसिटी तो पंच इंद्रिय की है और खाली एक इंद्रिय का शरीर बनाया उसने, ऐसा नहीं होगा। कपड़ा सिटी है, शरीर भी वैसा ही बनेगा। जीव में ज्ञान का जितना उगाड़ होगा, देखो इसमें एक बात ऐसी समझना कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ बना बनाया बालक का शरीर है और उसमें आके जीव अंदर आके घुस गया, ऐसा कोई आकार मनुष्य का बनाया हुआ है उसमें कहीं से जीव आकर पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जीव कहीं से आता है, और जैसे हम ऐसे ना मिट्टी लेकर फिर उसके खिलौने बनाते हैं ना, वो क्या हुआ, जीव यहाँ ऐसा आता है और फिर वो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, और फिर पहले उसको सॉलिड लिक्विड बनाएगा, फिर उसमें से चमड़ी स्नायु ऐसे ऐसे बनाएगा, वो खून भी बनेगा, ऐसे एक 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 डेवलप होते होते वो सारा पूरा शरीर बनाएगा। ऐसा नहीं कि वो रेडीमेड कोई शरीर है और उसमें आकर जीव तैयार हो गया। देखो जितनी इंद्रिय वाला जीव होगा उतनी द्रव्येंद्रिया होती है, उन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर मैं जरा समझाती हूँ। अभी जहाँ आँख बने, कान है, नाक है, ये सारे रचना हुई, अब वहीं पर जीव के भी प्रदेश है ना। जीव ने ही अपने आजू बाजू में ये सारा डेवलप किया ना, सारा घर बनाया। तो जहाँ पर ये आँख बनी है वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश है उसमें क्या जानने की शक्ति है, वर्ण को ग्रहण करने की, वर्ण जानने की। इसमें गंध को जानने की शक्ति नहीं है। तो जहाँ जो इंद्रिया है वहाँ के आत्म प्रदेशों में वैसे वैसे विषय जानने की शक्ति तैयार होती है, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय तो पूरा है, तो उसमें स्पर्श को ग्रहण करने की, स्पर्श को जानने की शक्ति तैयार होती है, तो उसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। जैसे नाक द्रवेंद्रिय है, वहाँ के आत्म प्रदेशों में सुगंध दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। वो है ना सारे, वो द्रव्येंद्रियों की जो रचना है उसमें उसका डिफेक्ट है, उसमें भी वो नाम कर्म कारणीभूत होगा। मगर वो पूरा जीव सन्नी पंचेंद्रिय है, उसकी सारी इंद्रिया है, भावेंद्रिया है। हाँ, नहीं तो उसको चतुर इंद्रिय कहना पड़ेगा। पर्याप्ति पूरी है उसकी। जैसे नाक द्रवेंद्रिय है, वहाँ के आत्म प्रदेशों में सुगंध दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति है, शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझना, यानी कान है, नाक है, वो सारा आंखें, वहाँ के इंद्रियों में भी ऐसी ऐसी शक्ति होती है जिसको हम महावेंद्रिय कहते हैं। आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणाम आने की जो शक्ति है वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। यानी जीव ग्रहण करता है आहार, आहार वर्गना कहते ना उसको, आहार वर्गना को ग्रहण किया था और उसी को श्वासोश्वास रूप परिणाम आया। अब भाषा वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणाम आने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। मनोवर्गना रूप उद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणाम आने की शक्ति तथा गुणदोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणाम आने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। यानी इन शॉर्ट मन के द्वारा जानने की जो शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे आंख के आत्म प्रदेशों में वर्ण जानने की शक्ति उत्पन्न हुई, वैसे मन के द्वारा जो अन्य अन्य उपदेश ग्रहण है, जानना है, स्मरण करना है, उसकी जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मन पर्याप्ति। श्वास लेना वो श्वासोश्वास प्राण में आएगा, उसका कार्य होगा। यहाँ तो जीव की शक्ति की बात चल रही है। एक्चुअल श्वासोश्वास लेना वो अभी अगले हम कल देखेंगे, श्वासोश्वास प्राण क्या होता है, वो जो क्रिया है ना, एक्चुअल कार्य श्वास लेना और छोड़ना, वो तो जिंदगी भर चलता रहेगा। मगर वो लेने की शक्ति कब पैदा हुई, बिल्कुल एक छोटे अंतर्मूर्त में, जब जीव कहीं से मरकर यहाँ आया तो एक बहुत छोटे अंतर्मूर्त में ये सारी शक्तियाँ उसमें बन गई। कौन सी ये छह शक्ति अभी देखी ना, बोलो सिद्धार्थ। हाँ, शरीर पर्याप्ति, बहुत अच्छा, मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्ति, यानी छह प्रकार की शक्ति उसमें पूर्ण हुई। वो तो कार्य हुआ इसका, ये शक्ति का कार्य हुआ। हाँ, शक्ति है, शक्ति यानी पर्याप्ति, और एक्चुअल श्वास लेना और छोड़ने की जो क्रिया होगी तो वो प्राण में आएगी। यानी ये शक्ति तो कारण है, वो प्राण उसका कार्य होगा। अभी उसके अभी ये जमलिंग नहीं करना, जब हम प्राण सीखेंगे तब इसकी चर्चा फिर करेंगे। अभी तो इतना ही समझना कि जीव में ऐसी शक्ति सारी उत्पन्न हुई क्योंकि उद्गल परमाणु को ग्रहण करके उसको सॉलिड लिक्विड बनाने की शक्ति उत्पन्न हुई। सॉलिड लिक्विड बनाने का कार्य तो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि हर समय जीव शरीर के परमाणु को ग्रहण करेगा और शरीर रूप बनाएगा। अभी भी वो आप डॉक्टर को पूछो वो क्या कहेंगे, ये शरीर के सारे जो सेल्स है ब्लड से लेकर सारे शरीर के ऊपर त्वचा के भी वो नए नए उत्पन्न होते और पुराने पुराने झड़ जाते हैं, बराबर रीजनरेशन और डीजनरेशन चलता रहता है। इसका अर्थ क्या, हर समय नए 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 ग्रहण करता है। यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं, हर समय जीव शरीर के परमाणु ग्रहण करता है और उसको शरीर रूप से परिणमाता है। तो ये शक्ति, ये इसी करने की शक्ति कब उत्पन्न हुई, तो जीव कहीं से मर कर आया तब बिल्कुल छोटे अंतर्मुहूर्त में ये सारी शक्तियां उसने डेवलप की, तो ये पूरी डेवलप हो गई तो उसको हम कहेंगे पर्याप्त हुआ। अब पूरी डेवलप होने के पहले ही मर गया तो हम क्या कहेंगे, अपर्याप्त है। देखो 131 पेज पर, यहाँ इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है। देखो अभी सन्नी पंचेंद्री जीव है तो उसके छह के छह पर्याप्ति एक समय में शुरू हो जाती है और उसकी पूर्णता यानी कम्प्लीशन अलग अलग स्टेप पर, पहली पर्याप्ति पहले पूरी होगी, फिर दूसरी पूरी होगी, तीसरी पर्याप्ति, छहों का स्टार्टिंग समय एक है और एक एक पर्याप्ति क्रम क्रम से पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद शरीर पर्याप्ति शुरू होती है, ऐसा नहीं है। ये छह के छह पर्याप्ति एट अ टाइम शुरू हो गई, कब, जब जीव कहीं से मरकर आया पहले ही समय में वो पर्याप्ति शुरू होना चालू हो गया और एक एक छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त में एक एक पर्याप्ति पूरी होती जाती है। देखो इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है, वो 48 मिनट वाला नहीं लेना यहाँ। अंतर्मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं, बिल्कुल छोटे में छोटा अंतर्मुहूर्त है और सभी को मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त काल लगता है। यानी छह पर्याप्तियों को मिलकर कितना काल लगेगा, अंतर्मुहूर्त, वो कितना बड़ा, वो यथा योग्य ऐसा समझना। ये केवल ज्ञानी की ज्ञान का विषय। दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते। देखो यहाँ ऐसा समझना, छह पर्याप्ति एक साथ शुरू हो गई, सबसे पहली कौन सी पूरी होगी, आहार पर्याप्ति। वो पहले शुरू होने के पहले ही जो जीव मर जाएगा उसको हम कहेंगे लब्धि अपर्याप्त, जिसको हम कहते ना एक श्वास के 18वें भाग में मर जाता है, तो उसकी एक पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती है तो उसको कहेंगे अपर्याप्त। अब आहार पर्याप्ति पूरी हो गई और शरीर पर्याप्ति बन रही है, अब पूरी नहीं हुई तो तब तक उस जीव को क्या कहेंगे, पूरी होने जाने वाली है परंतु अभी बन रही है ना, जैसे मकान बन रहा है और पूरा होने वाला है परंतु जब तक बन रहा है तभी हम क्या कहेंगे, अभी बन रहा है ऐसा कहेंगे। तो वैसे निर्वृत्ति अपर्याप्त यानी अभी तो पहली तो पूरी हो गई, जिसकी एक भी नहीं पूरी होगी मर जाएगा, वो तो लब्धि अपर्याप्त कहलाएगा। और अभी जिसकी दूसरी पूरी नहीं हुई है, अभी बन रही है, उसको क्या कहेंगे, निर्वृत्ति अपर्याप्त। निर्वृत्ति यानी बनना, तैयार होना, तो अभी वो निवृत्ति अपर्याप्त। निवृत्ति यानी निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होना, कि जो अभी पूरा इन मेकिंग है ना, अभी पूरा नहीं हुआ, उसको कहेंगे निर्वृत्ति अपर्याप्त। इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है, यानी अभी छह पर्याप्ति उसकी पूरी होने के पहले उसको पर्याप्त कह देंगे क्योंकि वो नियम से होने वाली है पूरी। जैसे अभी कोई डॉक्टर बना नहीं है, मेडिकल के थर्ड ईयर में है, तो क्या कहेंगे, उसको डॉक्टर पुकारेंगे, है ना, और वो एडमिशन लेकर ही भाग गया तो नहीं चलेगा। तो ऐसे जिसकी दो पूरी हो गई है उसको पर्याप्त कहने में आता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है। ہوتی ہے ہاں, جس کی ایک بھی نہیں پوری ہوگی اس کو تو لبدھی اپریاپت کہتے ہیں, جب تک دوسری پوری نہیں ہوتی تب تک نروتی اپریاپت کہتے ہیں, اور اس کے بعد جیو کو پریاپت کہتے ہیں, یعنی وہاں سے اس کو پریاپت کہنا چالو ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو یدی ایک بھی نہیں پوری ہوگی تو ہی اپریاپت کہلائیں گے, وہ کون سا لبدھی اپریاپت, ابھی جس کے چھ پوری ہونے والی ہے پرنتو اس میں کچھ ٹائم لمٹ ہے نا, مان لو 10 سیکنڈ لگتے ماننے کے لیے, وہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا, سیکنڈ سے بھی کم سمے لگتا ہے, مگر سمجھو تب تک کیا, تب تک اس کو کیا کہیں گے ہم, کیونکہ پریاپت نام کرم کا ادے چل رہا ہے تو جیو کو ہم پریاپت ہی کہیں گے, پرنتو جب تک دوسری بھی پوری نہیں ہوتی تب تک اس کو ایک اسپیشل نام دیا نروتی اپریاپت, یعنی وہ اپریاپت نام کرم والا اپریاپت نہیں, وہ پریاپت بننے جانے والا ہے پرنتو ابھی چل رہا ہے کاریہ اس کا. نہیں تبھی نہیں مرے گا, سب پوری ہو جائیں گے, پریاپت جیو ہے. ہاں سیکنڈ تو کون سا ہے, وہ تو وہ پریاپت ہی کہلائے گا, پہلے سے اس کو پریاپت پریاپت والے کا یہ بھید ہے نروتی اپریاپت, یعنی پریاپت کہنے اس کو پریاپت نام کرم کا ادے ہے, وہ چھ پوری ہونے والی ہے پرنتو ابھی چل رہا ہے کاریہ, کچھ سمے لگے گا نا اس کو, مان لو 10 سیکنڈ لگتے ہیں تو آٹھویں سمے میں اس کو کیا کہیں گے, ابھی پورا تو نہیں ہوا ہے مگر ہونے جا رہا ہے تو پریاپت ہے, مگر وہ نروتی اپریاپت بن رہا ہے. شریر پریاپتی جب تک پوری نہیں ہوتی نروتی اپریاپت, پریاپت نہیں نروتی اپریاپت, یعنی اس کا اپریاپت نام کرم کا ادے ہے اور اس کی ایک بھی پریاپتی پوری نہیں ہوگی, اس کے پہلے وہ مر جائے گا. پرنتو لبدھی اپریاپت جیوں کے اپریاپت نام کرم کا ادے رہتا ہے, یہ ساری باتیں آگے یہاں ایکسپلین کی ہے. دیکھو اپریاپت جیوں میں پریاپتی کی سنکھیا پریاپت جیوں جتنی ہونے پر بھی, دیکھو یہ اس میں مت ہے, ابھی جو کوئی ایکیندری اپریاپت جیو ہوگا اور ایکیندری پریاپت جیو ہوگا, یا پنچیندری کی بات کرو منشیوں کی, منشیوں میں کتنی پریاپتی ہوتی ہے, چھ ہوتی ہے, اور جو سمورچھن منشیہ ہوگا جس کو ہم لبدھی اپریاپت کہتے ہیں اس میں پریاپتی کتنی ہے, ہے چھ, پورنتا ایک کی بھی نہیں ہوگی, شروع کتنی ہوئی اس کی بھی چھ کی, پرنتو ایک بھی پوری نہیں ہوئی اس کے پہلے مر گیا, ایک خیال آتا ہے. دیکھو پریاپتی اور پران میں یہ ڈفرنس ہوگا, تو وہ پران جب سیکھیں گے اس کے پھر ہم یاد کریں گے اس کو, ابھی اتنا ہی سمجھنا پریاپت کی بھی اپریاپت کی بھی چھو چالو ہو گئی, پریاپت ہونے والے کی بھی چھو چالو ہو گئی, پرنتو اپریاپت والا ایک بھی پوری ہوئے بنا مرا, اور پریاپت کی تو چھو پوری ہونے والی ہے, اس کی جب تک دوسری پوری نہیں ہوتی تب تک اس کو نروتی اپریاپت کہا, دوسری پوری ہونے کے بعد اس کو پریاپت جیو کہنا چالو کیا. انڈر کنسٹرکشن کچھ ٹائم لگے گا, جب تک اتنا ٹائم تب تک کیا کہیں گے اس کو, ہمارا گھر بند رہا ہے ایسا کہیں گے نا, دیکھیے پھر پڑھتی ہوں دوسری لائن ہے اس طریقے کی, اپریاپت جیو میں پریاپتی کی سنکھیا پریاپت جیون جتنی ہونے پر بھی ان میں سے ایک بھی پریاپتی پورن نہیں ہوتی, اپریاپت ایکیندری وکلیندری اور سنی پنچیندریوں کو کرم سے, ابھی ہم نے دیکھے تھے ایکیندریوں میں کتنی پریاپتی ہوتی ہے, چار ہوتی ہے, اپریاپت ایکیندری میں بھی چار ہوگی برابر, دو اندریہ تین اندریہ چتر اندریہ اور اسنی پنچیندریوں میں کتنی ہوتی ہے, پانچ ہوتی ہے, पर्याप्तों में पांच होती क्या, अपर्याप्तों में पांच होते हैं, ये लब्धि अपर्याप्तक वाला होगा तो उसमें कितनी होगी, उसमें भी छह होगी और पर्याप्तक वाले में भी छह होगी। लब्धि अपर्याप्तक वाले की एक भी पूरी नहीं होगी और पर्याप्त वाले की छह पूरी हो जाएगी। देखो अपर्याप्त एकेंद्रीय विकलेंद्रीय और संधि पंचेंद्रियों को क्रम से चार पांच और छह पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। दीपाली ख्याल में आता है? हाँ। जी उसके पूर्व ही श्वास के अठारहवें भाग में मर जाता है, यानी एक पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही मर जाता है, इतनी छोटी उसकी आयु है। यानी एक पर्याप्त पूरी होने के लिए भी टाइम उतना लगेगा ना या उससे थोड़ा ज्यादा? हमने 124 सेकंड निकाला था, वो तो बहुत स्थूल कथन है। इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति समान होती है परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्ति पूर्ण होती है जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। इसका क्या अर्थ ख्याल में आया सबको? देव नारकी भोगभूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते ही लगाया, इनमें अपर्याप्त जीव नहीं होते। सभी गर्भज जीव तिर्यंचा मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, यानी माँ के पेट में आने वाला बालक तो पर्याप्त जीव ही है, भले वो एक घंटे में मर जाए या पांच सेकंड में मर जाए, वो पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नामकरण है उसका। निवृत्य पर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं, वो नियम से पूरे होने वाले, परंतु लब्धि अपर्याप्त जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं, वो पर्याप्तों की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए लब्धि अपर्याप्त। लब्धि से अ रह जाते हैं ना, पर्याप्तों की लब्धि उनको नहीं रह जाए। लब्धि है ना प्राप्ति, हम देखते ना उपक्षम लब्धि वगैरह, तो यहाँ किसकी लब्धि? पर्याप्ति की लब्धि नहीं होती उनको। सभी पर्याप्ति एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियाँ कायम रहती है। इंदुबेन आपका प्रश्न, ये शक्ति कब तक कायम रहेगी? वो शक्ति डेवलप होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त लगा, जब तैयार होगी तो पूरे लाइफ टाइम तक ये शक्ति बनी रहेगी। यानी जीव हर समय जो ग्रहण करता है पुद्गल परमाणु को उसको शरीर रूप से परिणमाता रहेगा, वो भाषा मन श्वासोश्वास सारा उसका कार्य हर समय चलता रहेगा। हाँ नहीं, अभी क्या होता है, ये पर्याप्ति तो उनकी पूरी हो गई, अब हर समय क्या चलता है, अभी शरीर नाम का नाम कर्म का उदय चलता है और जितना वो ग्रहण करता है उसको उस रूप परिणमता है, मगर उसमें ये शरीर नाम कर्म का भी योगदान है। अभी कोई जो वज्र वृषभ नारा सहनन वाला है वो भी परमाणुओं को ग्रहण करके उसको हड्डी वाले हड्डियां यानी जो वज्र जैसे हड्डियां बनाएगा, और हमारे जैसे हीन सहनन वाले भी हीन प्रकार की हड्डियां बनाएंगे, तो हमारे में भी पर्याप्ति उसमें भी पर्याप्ति है, तो हम क्यों नहीं बनाते? तो हमारा वैसा नामकर्म का उदय चल रहा है, विशिष्ट सहनन वाला नामकर्म का उदय चल रहा है, तो वैसे परमाणु को वो परिणाम आएगा, है ना, वैसे परमाणु को ग्रहण भी करेगा और वैसे उसको परिणाम आएगा। जो गोरा आदमी वो गोरे परमाणु को क्यों ग्रहण करता है और काला आदमी काले को ही क्यों ग्रहण करता है? तो उसका स्पर्श नाम का नामकर्म का उदय चल रहा है, वर्ण नाम का नामकर्म का उदय चल रहा है। वैसे ही सारे कोई मुलायम हो या कोई किसी की रस की नहीं, तो ऐसे रस ही रस क्यों बनी रहती है पहले से? तो उसमें वो स्पर्श नाम का जो वृक्ष वाला जो है, तो वैसे नामकर्म का उदय है, तो वैसे परमाणु वो शरीर रूप से ग्रहण करेगा। तो उसमें कौन सा क्रीम लगाना है? कर्म को कौन सा साबुन लगाना बेटा? कौन सी क्रीम लगाना है? देखो ये शरीर जो काला गोरा है ना वो मैं नहीं हूँ। क्यों? ये क्या है? पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है, इसकी चिंता मत करना। भले काला हो गोरा हो, वो काले से गोरा होगा, गोरे से काला होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। ये गोरा काला मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? जीव हूँ। और मैं क्या मेरे पूरे ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण हूँ कि कुछ अधूरा हूँ? समझो, दांत निकल गया, बाल निकल गए, तो अपने से कुछ कम हुआ क्या? कि जितने हैं उतने कि जितने हैं उतने ही है। तो पहले जितना समझता था उतना ही समझता है क्या? और कुछ ज्यादा कम समझ है? उतना ही समझते हो ना। तो ये दूसरे लोगों को देखने के लिए फर्क पड़ेगा, उनको देखने दो, अपने लिए क्या फर्क पड़ा? हम जितने हैं उतने अंदर से देख रहे हैं ना अपने आप को। दूसरे लोग अपने को कैसा देखते हैं उसकी चिंता क्यों करते हैं? क्यों दूसरों को दिखाने के लिए गोरा क्यों बनना है? अरे हम अंदर से तो कैसे सिद्ध है ना? तो इसकी चिंता मत करना ज्यादा। देखो बच्चे तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। यहाँ क्या लिखा देखो, ये अंत की लाइन, सभी पर्याप्ति एक अंतर्मूर्त पे पूर्ण हो जाती है और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्त यानी शक्तियाँ कायम रहती है। उनका पुद्गल स्कंधों को शरीर मन भाषा श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी, ये तो शक्ति हुई, पर्याप्ति यानी क्या हुआ? शक्ति। अब ये शक्ति हुई तो उसका कार्य कब तक चलेगा? तो ये आयु की समाप्ति पर्यंत उसका कार्य चलेगा। कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। बेटियों, पर्याप्ति का वर्णन पढ़कर मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, पुद्गलों को परिणमाने की देखो मेरे में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना। क्योंकि जब जब हम करणानि योग के विषय पढ़ेंगे, निमित्त का कथन पढ़ेंगे, तो देखो जीव में ऐसी शक्ति है ना कि वो परमाणु को भी शरीर रूप से परिणमाता है। देखो है कि नहीं, भाषा वर्गना को भाषा रूप परिणमाता है, ये जीव का ही कार्य है कि नहीं? ऐसी मिथ्या मान्यता को पुष्टन मत करना, इस तरह की भ्रांति मत करना। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। देखो जीव की योग्यता से जीव का जो जानन जानन रूप कार्य है वो जीव में होता है। पुद्गल की योग्यता से जो पुद्गल शरीर रूप परिणमाने के योग्य होता है वो शरीर रूप परिणमन उसकी अपनी योग्यता से होता है। योग्यता उसकी अपनी है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी एक एक समय की पर्याय करने की योग्यता उसी द्रव्य की अपनी है। तीन काल में कोई अन्य द्रव्य उसको परिणमा नहीं सकता। कोई ईश्वर भी आके दूसरे द्रव्य को परिणमाए, एक परमाणु को भी पलट सके, ऐसी शक्ति ही किसी द्रव्य में नहीं है। ये मूलभूत बात पकड़ में लेना कि शरीर का जो कार्य है वो शरीर में शरीर के अपनी योग्यता से हो रहा है, जीव का कार्य जीव में उसके अपनी योग्यता से हो रहा है। अब यहाँ आकर उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर उन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति तो अपने में नहीं है ना, इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। हम कहते हैं ना, मैंने शब्द बोले, मैंने हाथ हिलाया, कथन तो ऐसा होगा, परंतु उसमें अपनी मान्यता ठीक करना कि हाथ ये पुद्गल परमाणु है तो उसके अनंत पुद्गल परमाणु, एक भी नहीं है, तो उसका एक एक परमाणु का कार्य, ये गमन रूप जो कार्य हुआ वो भी उसके अपने कारण से हुआ है। मेरे अभी आत्म प्रवेश यहाँ से यहाँ हिले वो भी अपने स्वयं की योग्यता से हिले है, तो उसमें अन्य द्रव्य ने कुछ नहीं किया। मैंने हाथ को हिलाया है, हाथ ने मुझे उठाया, ऐसा कुछ है नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का कार्य स्वतंत्र है, उसमें क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब जब ये ऐसी पर्याय पलटी तब वहाँ अन्य द्रव्य उपस्थित था, बस इतना ही, उसने कराया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने हाथ में पेन लेकर बराबर नोटबुक पर लिखा, ये किसका कार्य हुआ? जीव का के पुद्गल का? जीव ने किया क्या, पुद्गल ने किया? पुद्गल ने किया, ऐसा बराबर समझना। फ्रेंड्स को मत बताना, ये अपनी सारी रहस्य की चाबी अपने पास ही रखना। हाँ, जो समझना चाहता है ना उसे, उसके बिना और किसी को नहीं समझाना है, नहीं तो लोग अपने को ही पागल ठहरा लेंगे। क्यों? इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अनादि निधन वस्तुएं, वस्तुएं में कितनी वस्तु लेना? हाँ वैशाली, वस्तुएं ने द्रव्य, तो कितने द्रव्य है इस विश्व में? 6 द्रव्य, और वो कैसे है? अनादि निधन यानी अनादि अनिधन यानी अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि से है, जिसके कोई शुरू नहीं आदि नहीं और जिसका कोई अंत नहीं है, यानी जो सारे के सारे द्रव्य है वो हमेशा रहने वाले है, 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 कभी उसका अंत नहीं होगा। ऐसी जो अनादि निधन वस्तुएं है वो भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होती है, ये उसकी स्वयं सिद्ध शक्ति है। देखो अभी तो पंचाध्याय चल रही है ना, उसमें बहुत सी बातें आई, वो स्वयं सिद्ध पर कितना वो आप जोर डाला है। जीव में जो गुण है, जीव जो द्रव्य है, वो किसी अन्य के कारण हुआ है कि वो अपने से है? अब उसमें जो सामान्य विशेष रूप शक्तियां है, ये सारे गुण है, सामान्य गुण है, विशेष गुण है, वो किसके कारण है? अपने में जो अस्तित्व गुण है वो किसके कारण है? हाँ बेटा, किसी ने उत्पन्न किया, वो स्वयं का अपना गुण है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। हमारे में जो ज्ञान गुण है वो किसने बनाया? हाँ बेटा, वो स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, अपना सारा जो स्वरूप है वो अनादि अनंत है। वैसे अपनी एक एक समय की पर्याय भी किसी ने बनाई नहीं है, वो पर्याय भी स्वयं करे, ऐसी स्वयं सिद्ध शक्ति हर जीव में है, हर पर्याय में, ये हर द्रव्य में, पुद्गल का परमाणु हो, धर्म अधर्म आकाश हो या जीव हो, उसकी एक एक पर्याय वो द्रव्य स्वयं करे, ऐसी उसमें योग्यता पड़ी, यानी अपनी उस समय की योग्यता से वो द्रव्य अपने उस पर्याय रूप से परिणमित होता है, अन्य कोई द्रव्य उसको परिणमाता नहीं। इतनी स्वतंत्रता ख्याल में ले लेंगे तो सारे दुनिया से अपना लक्ष्य हटकर शरीर को गोरा करना के काला ही रखना, हाँ बेटा, इसका सारा ध्यान छोड़कर अपने द्रव्य की ओर देखना। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमाता नहीं है, माँ भी बच्चे को परिणमाती नहीं, और हम क्या मानते हैं? देखो हमें बच्चों को इतना ट्रेन किया, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, है ना? क्या कहे यहाँ क्या लिखा है, कोई किसी को परिणमाता नहीं है, दूसरे को परिणमित कराने का भाव निगोद है। तो कोई कहेंगे चलो आज से हम बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, वो जब होता है देखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कहें? कौन कहता है कि जो मानता है कि मैं करती हूँ, जो करने धरने का भाव हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका होते हुए जाना। पहले हम करते थे ऐसा मानते थे, जब तक करता हूँ ऐसी मान्यता बनी रहेगी तब देखो मैं करता हूँ, पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने करना बंद किया, मैंने पहले करती थी अब बंद किया, यानी इसे छोड़ देने में भी कर्तृत्व करने का भाव बना है। हालत है, रोटियां रोज मैं बनाती थी, अब आपने बताया भाई रोटी नहीं बना सकती, तो देखो आज से मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, देखो किसका पेट भरता है, यानी क्या वो मान्यता तो बनी रही, वो कार्य होने योग्य था तब बनता था, नहीं होने योग्य तो नहीं बनता था, परंतु इसकी मान्यता तो वैसी की वैसी रही। ये अपना अभिप्राय कहाँ, भूल कहाँ पड़ी है, वो अपने आप को पकड़ना। देखो ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। हमने देखा था उद्गल को परिणमाने की शक्ति, उसको खल रूप रस रूप करने की शक्ति, उसको भाषा पर या भाषा रूप बनाने की शक्ति, ऐसी शक्ति तो कहाँ। परंतु ये जो जीव का जैसे ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, गुण है, ज्ञान नामक गुण है, वैसा गुण नहीं समझना उसको। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादिकाल से ही पाया जाता है, और कर्म के उदय में जीव की कैसी अवस्थाएं होती है उसका यह वर्णन है। स्वयं को ही शरीर रूप बंधन में डालने वाली शक्ति कैसे हो सकती है। हमने क्या कहा कि जीव कहीं से मरकर आया, उसने पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया और शरीर रूप से उसको बनाया, तो अपने को क्या किया, शरीर में लॉक कर दिया। तो शरीर रूप बंधन में डालने वाली शक्ति कैसे हो सकती है। यदि हम उसको शक्ति मानेंगे कि हमारे में कोई विशेष पावर है, देखो हमने इन सारे पुद्गल परमाणुओं को अपने शरीर रूप बनाया, देखो हमारे पास पावर है कि नहीं है, तो इसको हम शक्ति कैसे कहेंगे कि खुद को ही बंधन में डाले, तो ये शक्ति तो नहीं हो सकती ना। पर्याप्ति से युक्त होने पर जीव का जो कार्य शुरू हो जाता है, पहले तो शक्ति उसके पास डेवलप हो गई कि उसको सॉलिड लिक्विड करे, उसको भाषा रूप परिणाम आवे, उसको श्वास रूप परिणाम आवे, ये शक्ति हुई। अब उसका कार्य क्या हुआ, एक्चुअल वो श्वासोश्वास लेना या अन्य अन्य जो कुछ कार्य हो गए उसे प्राण कहते हैं। उसका विवेचन मैं आगामी पत्र द्वारा करूंगी, यानी वो प्राण प्ररूपणा जो है, जीवों के जो प्राण कहलाते हैं द्रव्य प्राण, उसकी चर्चा हम जब करेंगे तो उसके लिए ये कारण रूप है, पर्याप्ति एक कारण है और प्राण उसका कार्य है। तो प्राण यानी क्या, वो कितने प्रकार के होते हैं, एक इंद्रियों को द्विंद्रियों को कितने होते हैं, वो सारी चर्चा अभी हम कल करेंगे। तो आज का जो विषय है पर्याप्ति का, ये नाम नए है ना, तो इसमें आपकी क्या क्या प्रश्न है वो पूछना। पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है। अभी यहाँ लिखता हूँ, देखो लास्ट टाइम क्या, पर्याप्ति से युक्त होने पर, युक्त होने पर यानी पर्याप्ति पूरी होने पर जीव का जो कार्य शुरू हो जाता है, पहले तो पर्याप्ति थी कि उसको जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उसको खल रूप और रस रूप परिणाम आने की शक्ति हुई, वो तो हुई पर्याप्ति। अब उसको खल रूप और रस रूप परिणाम आने का होगा कार्य, वो कार्य चलता रहेगा जिंदगी तक, उसके मरण के समय तक वो अनंत परमाणु को ग्रहण करेगा, छोड़ेगा, वो चलता रहेगा उसका। तो छह पर्याप्तिक नाम कौन सुनाएगा मुझको, आप सुनाओगे, सुनाओ। पहली कौन सी, हाँ अब याद रखो मैं पूछूंगी, हाँ हाँ बराबर, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। सिद्धार्थ आप बोलो, मन पर्याप्ति आप बोलो, पर्याप्ति वेरी गुड, हाँ श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। दीपाली बोले, हाँ कैपेसिटी, पर ये जो कैपेसिटी जीव की शक्ति हम कहते हैं ना, जीव का ज्ञान गुण है या उसका दर्शन गुण है, वैसी कैपेसिटी नहीं। हाँ जो संधि पंचेंद्रिय हो तो ये तो छह पर्याप्ति ने हो, संधि पंचेंद्रिय ने जो नाम कर्म नो उद, हाँ सेम, हाँ बराबर, मैंने जो परमाणु ग्रहण किया है उसको सॉलिड लिक्विड रूप बनाने की शक्ति तो सब में सेम है। वो कौन से जाति के परमाणु ग्रहण करता है, वो तो उसके उसमें शरीर नाम कर्म या अन्य जो नाम कर्म है ना उसमें, सहनन है, संस्थान है, वो बहुत सारे नाम कर्म है, 93 है, तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग वहाँ रचनाएं बनेगी। ये वो बताया ना जो पंचेंद्रिय सारों में पर्याप्ति सेम हो, तो चार इंद्रिय वाले में कितनी पर्याप्ति होगी और असंधि पंचेंद्रिय में बराबर। तो इसमें कोई शंका है अभी? और कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। कल हमने जीव समास पढ़ा और अभी पर्याप्ति पढ़ी। हाँ किसका? ओघ गुणस्थान को ही ओघ ऐसा कहते हैं, ऐसा उसका नाम है ओघ। गुणस्थान के और नाम क्या पढ़े आपने? संक्षेप, ओघ, सामान्य और गुणस्थान। और मार्गणा के? विस्तार, आदेश, विशेष और मार्गणा। बराबर, बहुत अच्छा। ये बच्चे बहुत अच्छा याद रखते हैं। ख्याल में आता है कुछ? बहुत अच्छा है। क्या क्या समूर्छन जीव? देखो साइंस कहलाएगा वो, तो साइंस में ऐसा होगा वो नर है, मादी है, ऐसे सारा डिस्क्रिप्शन आएगा। हाँ ये सारे उसके वो अलग अलग जाति के उसमें जीव समझ लेना। ये सारे ही समूर्छन जीव है। हम तो उसमें ऐसे डिफरेंस करते ना, नर नर है वो, कीड़ों में भी एक होते हैं। हाँ हाँ माता पिता के बिना ही होते हैं, बिना माता पिता के वो विशिष्ट जाति के उसमें से परमाणु ग्रहण करते हैं। और ऐसे माता का और पिता ओवम और एग ऐसा उसमें कुछ नहीं रहता, यानी जो मनुष्य में कैसे माता पिता से वो बालक पैदा होता है वैसा उसमें नहीं होता। वो सारे ही एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक सारे ही समूर्छन जीव है। हम जब पढ़े तो उसमें भी फीमेल और मेल ऐसा भेद करके उसके शरीर के चिन्ह भी पहचान देते, मगर वो सब जान लेना वो समूर्छन ही है। जीव के 14 भेद किए जीव समाज में। हाँ तो 20 प्ररूपणा में से ये एक प्ररूपणा है जीव समाज। सारे जीव की विशेष वर्णन है ना। अभी एक तो जीव समास हुआ, दूसरे अभी हम देखेंगे कि पर्याप्ति हुई, वो एक चैप्टर हुआ ना, पर्याप्ति की अपेक्षा से जीवों की पर्याप्तियां बताना, जीवों के प्राण बताना, जीवों के गुणस्थान बताना, ये अलग 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 उसके जीव के डिस्क्रिप्शन चल रही है। जीव समास एक टॉपिक हो गया, वो टॉपिक में हम क्या क्या देख रहे, जैसे पर्याप्ति हमने एक टॉपिक देखा, उसमें किसी के 6 पर्याप्ति होती है, किसी के 5 होती है, किसी के 4 होती है, वैसे जीव समास एक टॉपिक हुआ और उसमें भी योनियों के भेद अलग, कुल के भेद अलग, अवगाहना के भेद अलग, और हमने जो 14 देखे वो भेद अलग। कौन से? वो तो निगोद में आए, जो एकेंद्रीय सूक्ष्म या एकेंद्रीय बादर में जो साधारण वनस्पति थी उसके वो भेद है। साधारण वनस्पति देखी ना हमने, हाँ वो हुआ, वो तो बादर हुए, और जो सूक्ष्म बादर निगोद हुए क्योंकि किसी के आधार से है, वो कंदमूल इटसेल्फ वो प्रत्येक वनस्पति है उसके आधार से ये साधारण रह रहे। मैक्सिमम लाइफ स्पैन निगोदी का एक तो अपर्याप्त, वो अपर्याप्त का हुआ, अपर्याप्त का हुआ, अंतर्मूर्त है वो भी, पर्याप्तों का अंतर्मूर्त है। और निगोद शरीर कितने काल तक टिकेगा, शरीर की बात है, वो तो असंख्यात वर्षों तक, असंख्यात सागरों तक भी रहेगा। वो तो पुद्गल की स्थिति बताई। जीव कितना है तो जीव एक अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा वहां। अभी वनस्पति की आयु कितनी, ये सारा अलग अलग आएगा। पृथ्वी की वगैरह मैक्सिमम तो 22,000 वर्ष की है, उसमें भी कठिन पृथ्वी की अलग होगी, मृदु पृथ्वी की अलग होगी। ये सारे भेद बताए हैं अभी, वो लाइफ स्पैन का अलग। हाँ हाँ, यानी वो शरीर कितने हैं उसकी चर्चा है। स्कंद देखो, हाँ वो स्कंद नहीं, हमेशा बोलते हैं वो स्कंद नहीं है। देखो ये ऐसा देखे, अभी इस बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, अमुक है, वैसे तो हर एक ऑर्गन में क्या है, टिश्यूज है। हर एक टिश्यू में क्या है, सेल्स है। तो सेल से अब सबसे छोटा उसका है ना, तो उसको समझाने के लिए पहले हमने ये ऑर्गन्स है, उसके में टिश्यूज है, उसमें और सेल्स है, ऐसे डिवीजन कर करके बताया। वैसे अभी एक सुई के नोक के ऊपर बताता है उसमें क्या है, तो स्कंद। ये हमेशा जो पुद्गल परमाणु का स्कंद, उसके स्कंद की बात नहीं है, ये शरीर समझाना है ना उसको। इतने स्कंद है, उसमें इतने अंडर है, उसमें इतने पुलवी है, उसमें इतने आवास है, और सबसे छोटा आवास उसमें इतने शरीर है। तो वहां जैसे हमने सेल से, वैसे यहाँ एक एक शरीर, तो एक एक शरीर में अनंत जीव। जो पुद्गल परमाणु का स्कंद, उसके स्कंद की बात नहीं है, यह शरीर समझाना है ना उसको। इतने स्कंद है, उसमें इतने अंडर है, उसमें इतने पुलवी है, उसमें इतने आवास है, और सबसे छोटा आवास उसमें इतने शरीर है। तो वहां जैसे हमने सेल से, वैसे यहाँ एक एक शरीर, तो एक एक शरीर में अनंत जीव। यानी शरीरों के समूह को, अभी नीचे से ऊपर जा, इतने शरीरों के, असंख्यात शरीरों के समूह को हम आवास कहेंगे, पुलवी कहेंगे, असंख्यात पुलवियों के समूह को हम आवास कहेंगे, असंख्यात आवासों के समूह को हम अंडर कहेंगे, और असंख्यात अंडरों के समूह को हम स्कंद कहेंगे। वो तो एक देह हुआ, एक शरीर, एक शरीर में अनंत परमाणु अलग औदारिक शरीर के। एक कितनी अनंतता है उसकी, पांच बार असंख्यात लिया उसकी। भारत देश का पता है ना, एक भारत देश है, तो उसमें कितने प्रांत है, उसमें कितने जिले हैं, उसमें कितने तालुका है, उसमें कितने छोटे छोटे गांव के समूह है, उसमें कितने गांव है, एक एक गांव में कितने घर है, और एक एक घर में कितने लोग रहते हैं, ऐसा लेना।